एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
हाँ, सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विचारक की दुनिया में झांक रहे हैं जिनका नाम तो शायद सबने सुना होगा, लेकिन जिनके विचार आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। प्लेटो।
हाँ बिल्कुल, और इस सफर में हमारी गाइड बनेंगी जानी मानी दार्शनिक जूलिया अनास। उनकी दो किताबें हैं प्लेटो और प्लेटो ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, और ये किताबें प्लेटो को समझने का एक बहुत ही क्या कहते हैं सुलझा हुआ नजरिया देती हैं।
मैं हूँ मेजबान एक।
और मैं हूँ मेजबान दो।
तो पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो यही है, प्लेटो मतलब 2500 साल पुरानी बातें, आज 2025 में इनकी क्या जरूरत है, क्यों पढ़े हम इन्हें? अरे यही तो मजेदार बात है, जूलिया अनास यही बताती हैं कि प्लेटो सिर्फ पुराने मुश्किल सिद्धांत नहीं गढ़ रहे थे।
नहीं,
उनका सारा काम असल में उनके गुरु सुकरात ने जो एक सवाल उठाया था ना, बहुत बुनियादी सवाल।
कौन सा सवाल?
इंसान को जीना कैसे चाहिए,
एक अच्छी मतलब एक सार्थक जिंदगी क्या होती है,
ज्ञान क्या है, न्याय क्या है, नैतिकता, ये वो सवाल है जो आज भी उतने ही जिंदा है, है ना? तो प्लेटो की जो ये खोज थी वो आज भी हमारे लिए मायने रखती है।
अच्छा, तो चलिए प्लेटो की दुनिया में गोता लगाने से पहले थोड़ा जूलिया अनास के बारे में जान लेते हैं, मतलब जिनके नजरिए से हम प्लेटो को देख रहे हैं। कौन है ये और क्या खास है इनके काम में?
हाँ जरूर, जूलिया अनास एरिजोना विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्री की प्रोफेसर है और प्राचीन यूनानी दर्शन मतलब खासकर प्लेटो और अरस्तु पर दुनिया की सबसे सम्मानित आवाजों में से एक मानी जाती हैं। वो ब्रिटिश एकेडमी की फेलो भी हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है।
मैंने सुना उनकी कई और किताबें भी हैं, जैसे खुशी की नैतिकता करके कुछ है, और प्लेटो के रिपब्लिक पर भी उन्होंने लिखा है।
हाँ बिल्कुल, उनकी कई प्रभावशाली किताबें हैं और उनकी खासियत यही है कि वो प्लेटो जैसे दार्शनिकों के जो गहरे कई बार मुश्किल लगने वाले विचार हैं ना, उन्हें बहुत साफ और सरल भाषा में समझाती हैं। वो उन्हें सिर्फ इतिहास की चीज नहीं मानती।
अच्छा,
हाँ वो दिखाती हैं कि उनके विचार आज हमारे जीवन से हमारी नैतिकता से कैसे जुड़ते हैं। और एक और बात, वो प्लेटो को ऐसे विचारक के तौर पर देखती हैं जिनके विचार कोई पत्थर की लकीर नहीं थे बल्कि समय के साथ विकसित हुए। वो किताबी बातों से ज्यादा इस पर जोर देती हैं कि इन विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है।
अच्छा,
तो अगर हम जूलिया अनास की इन किताबों के निचोड़ की बात करें, उनके सार की, तो वो प्लेटो के बारे में सबसे जरूरी बात क्या बताती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात जो अनास सामने लाती हैं वो ये है कि प्लेटो कोई आसमान मोड़ने वाले रहस्यवादी विचारक नहीं थे जैसा कई बार लोग मान लेते हैं। नहीं, उनका पूरा दर्शन, उनका पूरा काम बहुत ही व्यवहारिक था। वो असल में उसी बुनियादी सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे थे, भाई एक अच्छा जीवन कैसे जिया जाए।
मतलब उनके वो सारे भारी भरकम लगने वाले सिद्धांत, जैसे वो फॉर्म्स का सिद्धांत है, या आत्मा के तीन हिस्सों की बात करते हैं, या फिर वो आदर्श अजय का खाका खींचते हैं, ये सब उसी एक सवाल से जुड़े हैं, जीवन कैसे जिए।
बिल्कुल, अनास यही दिखाती हैं कि ये अलग अलग पहेलियां नहीं हैं, बल्कि एक ही बड़ी तस्वीर के हिस्से हैं। प्लेटो देख रहे थे कि उनके समय में एथेंस में नैतिक मूल्यों को लेके बड़ी गड़बड़ थी, राजनीति में अस्थिरता थी, सोफिस्ट लोग थे जो कहते थे सब कुछ रिलेटिव है। तो प्लेटो चाहते थे कि नैतिकता और ज्ञान का आधार सिर्फ लोगों की बदलती राय या अधूरी समझ ना हो, बल्कि कोई ठोस, कोई तर्कसंगत बुनियाद हो। उनका पूरा प्रोजेक्ट यही दिखाने की कोशिश है कि सच्ची खुशी और अच्छा जीवन तर्क और सच्चाई की गहरी समझ से ही मिल सकता है। अनास तो ये भी कहती हैं कि प्लेटो आज भी इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि उन्होंने सवाल पूछने और तर्क से उनकी तह तक जाने का जो तरीका सिखाया वो महत्वपूर्ण है, शायद उनके दिए जवाबों से भी ज्यादा।
ये तो वाकई एक दिलचस्प नजरिए की शुरुआत है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। प्लेटो के समय का माहौल कैसा था, मतलब एथेंस तब कैसा था, और उनके गुरु सुकरात का उन पर क्या असर पड़ा?
देखिए, प्लेटो का एथेंस काफी उथल पुथल वाला दौर था। एक लंबी लड़ाई हुई थी, पेलोपोनेशियन युद्ध, उसमें एथेंस हार गया था। लोकतंत्र कमजोर पड़ रहा था, राजनीतिक खींचतान बहुत थी, और सबसे बड़ा सदमा जो प्लेटो को लगा वो था 399 ईसा पूर्व में उनके गुरु सुकरात, उनको मौत की सजा दिया जाना।
हाँ, ये तो बहुत बड़ी घटना थी।
राजनीति और समाज के जो तौर तरीके हैं उनमें कुछ बुनियादी खोट है, और इसीलिए उनके विचारों में न्याय, सच्चा ज्ञान और एक आदर्श समाज की तलाश इतनी अहम हो जाती है।
और सुकरात, प्लेटो अपनी बातें अक्सर सुकरात के मुंह से क्यों कहलवाते हैं अपने संवादों में, मतलब डायलॉग्स में?
हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये सिर्फ लिखने का स्टाइल नहीं था, ये प्लेटो का तरीका था ये दिखाने का कि दर्शन यानी फिलॉसफी कोई अकेले में बैठकर ज्ञान पाने की चीज नहीं है।
नहीं।
ये एक तरह की बातचीत है, बहस है, विचारों की आपसी टक्कर से सच सामने आता है। सुकरात की तो खासियत ही यही थी, सवाल पूछना।
हाँ, वो सवाल बहुत पूछते थे।
उनकी वो पद्धति एलेनेकस कहलाती थी, जिसमें वो लोगों से सवाल पूछ पूछ कर उनकी अधूरी समझ या कहिए कि अज्ञानता को उजागर करते थे। उनका मानना था कि सद्गुण ही ज्ञान है, मतलब लोग बुराई जानबूझकर नहीं करते बल्कि अज्ञानता की वजह से करते हैं। और सबसे अहम बात, सुकरात ये मानते थे और कहते थे कि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, और यही मानना, अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना, यही असली ज्ञान की तरफ पहला कदम है।
अच्छा, तो सुकरात सवाल पूछकर लोगों को एक तरह से उलझा देते थे या सोचने पर मजबूर करते थे। प्लेटो इससे आगे कैसे बढ़े? ज्ञान और असलियत के बारे में उनके अपने क्या विचार थे?
हाँ, तो सुकरात हमेशा पूछते थे, बताओ न्याय क्या है, सुंदरता क्या है? वो किसी चीज के उदाहरण नहीं, उसकी पक्की परिभाषा, उसका सार जानना चाहते थे। और अक्सर ये बातचीत किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचती थी, एक उलझन सी रह जाती थी, जिसे अपोरिया कहते हैं। अनास के मुताबिक प्लेटो ने इसी से सीखा कि रोजमर्रा की जो हमारी समझ है या लोगों की राय है, वो काफी नहीं है। यहीं से प्लेटो को ये महसूस हुआ कि हमारी ये इंद्रियों वाली दुनिया जो स्टैंडिंग बदलती रहती है, इसके परे भी कुछ है, एक ज्यादा सच्ची, एक स्थिर रियलिटी, मतलब वास्तविकता।
और यहीं उनका वो मशहूर फॉर्म्स का सिद्धांत आता है, है ना?
हाँ जी, बिल्कुल। ये प्लेटो के दर्शन की धुरी है, आप कह सकते हैं। वो कहते हैं कि दो तरह की दुनिया है, एक तो ये जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये बदलती रहती है, इसमें हर चीज अधूरी है, परफेक्ट नहीं है, खत्म हो जाती है,
हमारी रोजमर्रा की दुनिया।
हाँ, और दूसरी दुनिया है फॉर्म्स की दुनिया, जो शाश्वत है, कभी बदलती नहीं, एकदम परफेक्ट है। इसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, सिर्फ अपनी बुद्धि से, अपने तर्क से समझ सकते हैं। हर चीज का एक असली आदर्श रूप यानी फॉर्म वहां मौजूद है, जैसे न्याय का असली फॉर्म, सुंदरता का असली फॉर्म, यहां तक कि कुर्सी का भी एक आदर्श फॉर्म। हमारी दुनिया की चीजें तो इन असली फॉर्म्स की बस धुंधली परछाइयां या कह लीजिए नकलें हैं।
अच्छा, और वो गुफा वाली कहानी इसी को समझाने के लिए थी ना?
हाँ,
कि हम सब कैदियों की तरह हैं जो दीवार पर नाचती परछाइयों को ही सच मान बैठे।
बिल्कुल, वो गुफा का रूपक एलेगोरी ऑफ द केव यही तो दिखाता है। हम सब उन कैदियों की तरह हैं जो गुफा में अंधेरे में बैठे हैं और सामने दीवार पर आग की रोशनी से बनती परछाइयों को देख रहे हैं और उसी को असली दुनिया समझ रहे हैं। जो दार्शनिक है वो उस कैदी की तरह है जो हिम्मत करके गुफा से बाहर निकलता है, सूरज की तेज रोशनी जो तर्क की तरह है में असली चीजों यानी फॉर्म्स को देखता है। और सबसे ऊंचा फॉर्म है शुभ का फॉर्म, फॉर्म ऑफ द गुड, जो सूरज की तरह है और बाकी सब फॉर्म्स को समझने की रोशनी और ताकत देता है। तो असली ज्ञान इंद्रियों से नहीं मिलता, वो तर्क से मिलता है, फॉर्म्स को समझने से मिलता है।
ये तो बहुत गहरी बात है, लेकिन अगर असली दुनिया वो फॉर्म्स वाली है तो हम इंसान उसे जानते कैसे हैं? मतलब हमारे अंदर भी उस दुनिया का कोई हिस्सा है क्या?
हाँ, प्लेटो के अनुसार बिल्कुल है, हमारी आत्मा, सोल। वो मानते थे कि आत्मा शरीर से अलग है और अमर है। ये शरीर तो नष्ट हो जाता है पर आत्मा रहती है, यही हमारी असली पहचान है और इसी से हम तर्क करते हैं, सोचते समझते हैं। रिपब्लिक में वो आत्मा के तीन हिस्सों की बात करते हैं, जैसे हमारे अंदर तीन तरह की ताकतें काम कर रही हों।
तीन हिस्से कौन कौन से?
एक है तर्क, रीजन, जो सोचता है, सच जानना चाहता है, चीजों को समझना चाहता है, ये हमारे रथ का सारथी है, ड्राइवर है। दूसरा है उत्साह या मनोबल, स्पिरिट, जिसमें भावनाएं होती हैं, गुस्सा आता है, इज्जत की चाहत होती है, हिम्मत होती है, ये सारथी का सहयोगी है, एक बहादुर सिपाही जैसा। और तीसरा है कामला या इच्छा, एपेटाइट, जो भूख, प्यास, पैसा, सेक्स जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करना चाहता है। ये घोड़ों की तरह है जिन्हें काबू में रखना जरूरी है।
अच्छा, तो फिर एक अच्छा या न्यायपूर्ण इंसान कौन हुआ प्लेटो के हिसाब से?
जिसकी आत्मा में ये तीनों ठीक से काम कर रहे हों। बिल्कुल, वो इंसान न्यायपूर्ण और सदाचारी है जिसकी आत्मा में इन तीनों हिस्सों के बीच सही तालमेल हो, एक अंदरूनी सामंजस्य हो। जब तर्क सारथी, उत्साह सिपाही की मदद से कामनाओं घोड़ों को सही दिशा में रखता है, उन्हें काबू में रखता है, तब इंसान न्यायपूर्ण और संतुलित होता है। दुख और बुराई तब आती है जब ये कामनाएं या गुस्सा बेकाबू होकर तर्क पर हावी हो जाते हैं। तो अच्छा जीवन जीने का मतलब बाहरी चीजें बटोरना नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा में यह व्यवस्था, यह हार्मनी कायम करना है।
ये तो ही व्यक्ति के अंदर की बात, अंदरूनी न्याय की। अब इसे प्लेटो ने समाज पर कैसे लागू किया, वो रिपब्लिक और आदर्श राज्य वाली बात?
हाँ, देखिए, प्लेटो ने व्यक्ति की आत्मा के इसी मॉडल को बड़े पैमाने पर समाज पर लागू कर दिया। उनका मानना था कि एक आदर्श राज्य, जिसे वो कैलेपोलिस कहते हैं, वो बिल्कुल एक संतुलित आत्मा जैसा ही होता है। जैसे आत्मा के तीन हिस्से हैं, वैसे आदर्श राज्य में तीन वर्ग होने चाहिए।
अच्छा, कौन से तीन वर्ग?
पहले दार्शनिक राजा, फिलोसोफर किंग्स, ये शासक वर्ग है जो तर्क का प्रतिनिधित्व करता है। इन्हें शासन करना चाहिए क्योंकि सिर्फ यही लोग सालों की कठिन ट्रेनिंग के बाद असली अच्छाई, शुभ का फॉर्म को समझ पाते हैं। दूसरे सैनिक, ऑक्सिलरीज, ये सैन्य वर्ग है जो उत्साह या मनोबल का प्रतिनिधित्व करता है। इनका काम राज्य की रक्षा करना और व्यवस्था बनाए रखना है। और तीसरे उत्पादक, यानी किसान, कारीगर, व्यापारी वगैरह, ये सबसे बड़ा वर्ग है जो कामनाओं का प्रतिनिधित्व करता है और समाज की भौतिक जरूरतें पूरी करता है।
और राज्य में न्याय का मतलब फिर वही हुआ कि हर वर्ग अपना अपना काम करे और दूसरे के काम में दखल ना दे।
बिल्कुल, जैसे शरीर के सब अंग अपना अपना काम सही से करें तो शरीर स्वस्थ रहता है, वैसे ही जब समाज के ये तीनों वर्ग अपना निर्धारित काम करते हैं बिना दूसरों के काम में टांगड़ाए, तो समाज न्यायपूर्ण और स्वस्थ होता है। लेकिन हाँ, ये मानना पड़ेगा कि उनके कुछ विचार, जैसे शासक वर्गों के लिए निजी परिवार या संपत्ति का न होना ताकि भ्रष्टाचार न हो, या कला और संगीत पर कड़ी सेंसरशिप, ये आज हमें बहुत अजीब और सच कहें तो विवादास्पद लगते हैं।
हाँ, ये तो है।
अन्नास भी यही सुझाव देती हैं कि शायद हमें रिपब्लिक को कोई लागू करने वाला राजनीतिक प्लान समझने के बजाय न्याय की प्रकृति पर एक गहरा वैचारिक प्रयोग, थॉट एक्सपेरिमेंट समझना चाहिए।
क्या प्लेटो बाद में भी इन्हीं विचारों पर टिके रहे, या उनके विचारों में कुछ बदलाव भी आया?
अन्नास बताती हैं कि हाँ, प्लेटो के बाद के कामों में, जैसे उनकी किताब लॉज में, उनके विचार कुछ बदलते नजर आते हैं। वो फॉर्म्स के सिद्धांत को लेकर और राजनीतिक संगठन को लेकर कुछ और व्यवहारिक बातें करते हैं। कानून के शासन पर, संस्थाओं की बनावट पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इससे पता चलता है कि उनका दर्शन कोई जड़ चीज नहीं थी, वो खुद भी सोचते रहे, बदलते रहे। उनकी असली विरासत शायद सिर्फ उनके दिए गए जवाबों में नहीं है, बल्कि उनके सोचने के तरीके में है। चीजों की तह तक जाना, लगातार सवाल पूछना, जैसा व्हाइटहेड ने कहा भी था कि सारा पश्चिमी दर्शन एक तरह से प्लेटो पर लिखी गई टिप्पणियां ही तो हैं।
वाह, ये तो कमाल की बात है। तो अगर हम अन्नास की नजर से देखे गए प्लेटो के कुछ मुख्य संदेशों को समेटें, तो क्या बातें सबसे अहम लगती हैं?
मेरे ख्याल से पहली और शायद सबसे जरूरी बात है तर्क और परखे हुए जीवन का महत्व। प्लेटो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि सिर्फ मान लेने या महसूस करने से बात नहीं बनती, हमें तर्क का इस्तेमाल करना होगा, अपने विश्वासों को, दुनिया को समझना होगा, उन्हें परखना होगा। उनका वो जो कहना है ना कि बिना परखा जीवन जीने लायक नहीं है, ये आज भी कितना सच लगता है। भारत में भी हमें अपनी धारणाओं पर, जो हम मानकर चलते हैं, उस पर सवाल उठाने और गहराई से सोचने की जरूरत है।
हाँ, बिल्कुल। और दूसरी बात जो मुझे बहुत असरदार लगी वो है दिखावट बनाम असलियत का फर्क। मतलब जो हम रोज देखते सुनते हैं, जो हमारी इंद्रियां हमें बताती हैं, क्या वही सच है या वो सिर्फ परछाइयां हैं, असलियत कुछ और है। प्लेटो हमें ये चुनौती देते हैं कि हम सतह के नीचे झांकें, असली और टिकाऊ सच की तलाश करें। आज के फेक न्यूज और सोशल मीडिया के जमाने में तो ये बात और भी ज्यादा जरूरी लगती है ना?
बहुत ज्यादा। हाँ, और तीसरा अहम संदेश है न्याय का, मतलब अंदरूनी और बाहरी तालमेल। न्याय सिर्फ कानून मानना या बाहरी तौर पर ठीक व्यवहार करना नहीं है। प्लेटो से अंदर ले जाते हैं, पहले अपने अंदर, अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं में संतुलन लाना है, हार्मनी लानी है, और फिर वही संतुलन समाज में भी लाना है। ये एक बहुत गहरी बात है कि न्याय सिर्फ बाहरी चीज नहीं, अंदरूनी अवस्था भी है। भारत में हम व्यक्तिगत शांति और सामाजिक न्याय दोनों के लिए इस सोच से शायद कुछ सीख सकते हैं।
और चौथा, वो ज्ञान, अच्छाई और नेतृत्व का रिश्ता। प्लेटो का मानना था कि जो सच में अच्छा है उसे जानना ही अच्छा बनने की ओर पहला कदम है। मतलब ज्ञान और सद्गुण जुड़े हुए हैं, और इसीलिए नेताओं को सिर्फ चालाक या ताकतवर नहीं होना चाहिए बल्कि ज्ञानी और नैतिक भी होना चाहिए। यह बात आज भी नेताओं से हमारी उम्मीदों पर और शिक्षा का असली मकसद क्या होना चाहिए इस पर सोचने को मजबूर करती है।
सही बात है।
अच्छा, इन विचारों को कुछ यादगार पंक्तियों या कथनों में कैसे कह सकते हैं? मतलब अन्नास की किताबों से कुछ ऐसी बातें निकलती हैं जो दिमाग में रह जाएं।
हाँ, कई हैं। एक तो वही जो हमने अभी बात की, बिना परखा जीवन जीने लायक नहीं है। मतलब अपनी जिंदगी, अपने विचारों पर सवाल नहीं उठाओगे तो वो जिंदगी सार्थक नहीं। ये एक तरह की नैतिक जिम्मेदारी है।
हाँ, और वो राजाओं वाली बात, जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनते या राजा दार्शनिक नहीं बनते तब तक शहरों को बुराइयों से छुटकारा नहीं मिलेगा। मतलब असली समझ और ज्ञान के बिना सिर्फ सत्ता चलाने का हुनर काफी नहीं है, ये सत्ता और नैतिकता को जोड़ता है।
एक और जो मुझे बहुत पसंद है वो शिक्षा के बारे में है। जबरदस्ती सिखाया गया ज्ञान मन पर पकड़ नहीं बनाता। कितनी सही बात है। सच्ची सीख तो तब होती है जब अंदर से जिज्ञासा हो, प्रेरणा हो। आप किसी पर ज्ञान थोप नहीं सकते।
और उस सुकरात वाली बात भी तो है, असली ज्ञान ये जानने में है कि तुम कुछ नहीं जानते। इसे सीखी हुई अज्ञानता भी कहते हैं। मतलब अपनी सीमाओं को पहचानना, ये बौद्धिक विनम्रता सिखाती है और हमेशा सीखते रहने की प्रेरणा देती है कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है।
हाँ, और एक और है जो सामाजिक जिम्मेदारी की बात करता है। राजनीति में भाग न लेने की कीमत ये है कि आप पर निम्न कोटि के लोग शासन करते हैं। ये दिखाता है कि सिर्फ सोचते रहना काफी नहीं, समाज को बेहतर बनाने में योगदान देना भी जरूरी है।
अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, गहरी बातें हैं, लेकिन क्या हम इन 2500 साल पुरानी बातों को आज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं? मतलब प्रैक्टिकली कैसे?
अरे क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आत्मचिंतन में हम सुकरात की तरह खुद से सवाल पूछ सकते हैं, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मेरा ये विश्वास कहाँ से आया? क्या ये फैसला वाकई मेरा अपना है या समाज के दबाव में है? क्या मेरी राय तथ्यों पर आधारित है या सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर? ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है, ये हमें बेहतर फैसले लेने में मदद करती है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल।
हाँ, ये तो है, और शिक्षा में भी ये सोच काम आ सकती है। जैसा आपने कहा, क्या हमारे स्कूल कॉलेज सिर्फ जानकारी रटा रहे हैं या बच्चों को सोचना भी सिखा रहे हैं? प्लेटो के हिसाब से तो असली पढ़ाई वो है जिसमें सवाल पूछने, बहस करने, खुद खोजने की आज़ादी हो। हमें बच्चों में वो जानने की भूख जगानी चाहिए।
बिल्कुल, और जब हम नेताओं को चुनते हैं या उनके काम को देखते हैं तो प्लेटो का वो दार्शनिक राजा का आदर्श, भले ही वो पूरी तरह लागू न हो पाए, पर एक पैमाना तो देता है। क्या नेता सिर्फ अपनी कुर्सी या अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, या उनमें समाज की भलाई की सच्ची समझ और नीयत है? हम किसे ज्यादा महत्व देते हैं, सिर्फ लुभावनी बातों और करिश्मे को, या फिर योग्यता, ज्ञान और ईमानदारी को?
सही कहा। ये हमें सोचने का एक फ्रेमवर्क देता है कि हमें क्या देखना चाहिए, और नैतिक दुविधाओं में भी मदद मिल सकती है।
हाँ, प्लेटो का विश्लेषण ये कहता है कि नैतिक गलतियां अक्सर समझ की कमी से होती हैं। मतलब सिर्फ नेक इरादे काफी नहीं है, सही गलत को ठीक से समझना भी जरूरी है। तो किसी नैतिक सवाल पर फैसला लेने से पहले उसके हर पहलू को सोचना, उसके पीछे के सिद्धांतों को समझना, ये प्लेटो की सीख है।
तो कुल मिलाकर जूलियन अन्नास के नजरिए से प्लेटो को समझने का यह सफर काफी फायदेमंद रहा। आपके लिए सबसे बड़ा टेकअवे क्या रहा इस पूरी बातचीत से?
मेरे लिए शायद सबसे बड़ी बात यह है कि प्लेटो हमें दिखाते हैं कि दर्शन यानी फिलॉसफी कोई सूखी, उबाऊ, किताबी चीज नहीं है। ये जिंदगी जीने का, उसे बेहतर बनाने का एक प्रैक्टिकल तरीका है, एक टूल है। सवाल पूछना, तर्क करना, अपनी समझ को गहरा करना, ये आज भी उतना ही जरूरी है जितना प्लेटो के समय में था। उनकी असली विरासत शायद उनके दिए गए जवाब नहीं है, बल्कि उनका वो सवाल पूछने का, सोचने का तरीका है।
और मेरे लिए ये बात कि कैसे उन्होंने व्यक्ति के अंदर के संतुलन, मतलब आत्मा के न्याय को, समाज के बाहर के संतुलन यानी सामाजिक न्याय से जोड़ा, ये दिखाता है कि व्यक्तिगत सुधार और सामाजिक सुधार अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और हाँ, वो दिखावे से परे जाकर असलियत को देखने की चुनौती, वो तो हमेशा ही हर जमाने में प्रासंगिक रहेगी।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एक्ट्रा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।